12 अगस्त 2025 को एक दिवसीय राष्ट्रीय युवा नवाचारी कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने मेगा टिंकरिंग डे के रूप में किया, जिसमें 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9467 अटल टिंकरिंग लैब्स के 473,350 छात्र यानी इनोवेटर्स एक साथ आए। देश भर के स्कूलों में एक साथ और वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में अटल टिंकरिंग लैब्स से सीधे छात्रों ने भाग लिया। नीति आयोग ने एक बयान में बताया कि इस आयोजन के दौरान छात्रों ने अपनी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्रियों का उपयोग करके एक DIY वैक्यूम क्लीनर को डिजाइन करने और बनाने की एक व्यावहारिक परियोजना में भाग लिया। आकांक्षी जिलों के सुदूर गाँव के स्कूल भी इस आयोजन में शामिल हुए। यह आयोजन अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जब क्लाउड वीडियो मीटिंग के माध्यम से देश के सारे अटल टिंकरिंग लैब्स के टिंकर्स जुड़े हुए थे। वहीं बिलासपुर के स्कूलों के अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चे एक साथ इंक्यूबेशन सेंटर बिलासपुर में एक छत के नीचे टिंकरिंग करने के लिए उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर दीपक बागला के संबोधन से हुआ।
आज बहुत स्पेशल दिन है और आज आप सब लोग इकट्ठे करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड आर यंग इनोवेटर्स, यू विल शो द वर्ल्ड द फोर्स ऑफ न्यू इंडिया। और आज आप सब इकट्ठे होकर यू विल शो द वर्ल्ड द पावर ऑफ न्यू इंडिया। एंड वॉट यू विल सी इन द नेक्स्ट 60 मिनट्स is what the Honorable Prime Minister's vision of making India is. You will all make India future ready. मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि Honorable Prime Minister का vision क्या था। उन्होंने ये कहा था कि when I see the young generation busy in innovation with enthusiasm, my resolve for new India gets stronger. In the 21st century, we will be able to get India the place in the world it deserves. आज आप सब उस नव भारत की, उस नए इंडिया की फाउंडेशन लेकर रहे, और इसी इमारत को सारी दुनिया देखेगी कि आप कितनी स्ट्रॉन्गली उसका बना रहे। अगले 60 मिनट में, इन द नेक्स्ट 60 मिनट्स, व्हाट वी विल सी इज द पावर ऑफ इंडियाज यूथ, व्हाट वी विल विटनेस इज द पावर ऑफ इंडियाज आइडियाज, व्हाट वी विल सी अगेन इज द पावर विच इंडिया कैन क्रिएट व्हेन इट कोलैबोरेट्स, एंड व्हाट वी विल शोकेस टू द वर्ल्ड is the power of India's innovation. What you will all do together when you do it together is that you will create the magic which creates the solution. And the solution which you will all do is not just for India, but for the entire world. You will create the solution to make the world a cleaner place.
Mission Director Dr. Deepak Bagla ne apne utbodhan mein Swachh Bharat ke bare mein charcha ki. उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम की मेंटर मिस नेहा शर्मा ने देश भर के बच्चों का एक सेशन लिया, जिसमें उन्होंने स्क्रैप से वैक्यूम क्लीनर लाइव बनाना सिखाया।
हेलो ऑल द टिंकरर्स, अ बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू हु आर देयर, हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस मेगा टिंकरिंग डे। So what we have come here for, do you all know what are we going to do today? We are going to tinker, we are going to create, and we are going to innovate, but together from the different parts of India. So I think we are all super excited for that, and we can directly begin doing this activity, right? But before we begin this activity, I want to tell you that we have a mission to complete. As sir has already said, Deepak sir just mentioned that we have a big responsibility to make a cleaner India, right? So how can we make this cleaner India? So we will start making something which can be used in your labs. And then, yes, planning to make a bigger innovation, planning to make something much more bigger, which can help the whole world, or the, what I can say, our India to be a cleaner place for everyone to live.
अटल टिंकरिंग लैब्स की मेंटर नेहा शर्मा की लाइव ट्रेनिंग के दौरान बिलासपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में भी 21 स्कूलों के 21 वैक्यूम क्लीनर्स बनकर तैयार हुए। जिसमें स्क्रैप्स जैसे पानी की बोतल, फैन, वायर, बैटरी का इस्तेमाल करके वैक्यूम क्लीनर तैयार किए गए। नीति आयोग द्वारा आयोजित किए गए इस मेगा टिंकरिंग डे के पीछे सोच क्या थी और बिलासपुर में इंक्यूबेशन सेंटर में सारे स्कूलों को एक साथ एक छत के नीचे बुलाकर इस कार्य को करवाया जाना, इसके पीछे की सोच क्या थी, इसके लिए हमने बिलासपुर के इंक्यूबेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर धनंजय पांडे से बातचीत की। उन्होंने बताया,
एक्चुअली इसका जो प्रिपरेशन है वो लगभग एक महीने पहले से हुआ, जब नीति आयोग ने कहा कि हमको मेगा टिंकरिंग करना है और उन्होंने उसको फिक्स किया। अब इसके पीछे लॉजिक ये था कि टोटल हिंदुस्तान में 10,000 ATL लैब्स हैं और 10,000 ATL लैब्स में कई सुप्त अवस्था में थे, तो एक टिंकरिंग करके उनको जागृत करना था। और जागृत करने के बाद ये भी एक था कि पर टिंकरिंग लैब्स में कम से कम 40 स्टूडेंट को टास्क दिया गया था, मिनिमम 40। तो टोटल जो है 40 × 10,000, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर होगा। तो ये एक हमारे प्राइमरी उद्देश्य था। दूसरी उद्देश्य यह था कि बच्चों में टिंकरिंग की भावना को जागृत करना और टिंकरिंग क्या होता है उसको सामने लाना और बच्चों क्रिएटिविटी को उनके अंदाज में परखना। अब रही बात हमारी इंक्यूबेशन सेंटर बिलासपुर की बात, तो अमित कुमार सर कमिश्नर, उनके संज्ञान जब आए तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड प्लान फॉर द बेटर पर्सपेक्टिव। और हमारे श्रीनिवास सर, ओ हम की पर्सपेक्टिव कैसे करें, तो हर टिंकरिंग स्कूल जो है बिलासपुर में लगभग 20 हैं, तो हम उनके एक एक टीम को बुलाया गया यहाँ पर। ये पहली बात हुई, कलेक्टर साहब ने इसके बाद विधिवत ऑर्डर्स किए और बिलासपुर के हर टिंकरिंग लैब से तीन तीन बच्चे यहाँ पर आए, इवन दो नॉन टिंकरिंग ATL लैब से भी टीम आई है। तो यहाँ पर टोटल लगभग 21 टीम आई है, 21 टीम में से लगभग मिनिमम 3 स्टूडेंट थे ही थे, मैक्सिमम 4 स्टूडेंट भी थे, 5 स्टूडेंट भी, 6 स्टूडेंट भी थे। तो ऐसे करके लगभग हमारे पास आज के डेट में स्टूडेंट्स, गार्जियन और उनके एस्कॉर्ट टीचर्स मिलाकर लगभग 140-150 गैदरिंग रही है। इन सभी ने एक साथ शो अप किया, तीन तीन टीवी से किया, एक जूम पर हमने किया, एक प्रोजेक्टर मॉनिटर से किया और इसको हमने एक वृहद कार्यक्रम बनाया। और ये जो प्रोग्राम है इसको कई जगह में, ये ऑल ओवर इंडिया में जो है वो प्रसारित हुआ। अच्छा लगा कि ये सब प्रोग्राम सक्सेसफुल निपट गया।
जैसे आज का दिन ही मेगा टिंकरिंग डे है और आप जब बात कर रहे थे उसमें बार बार आपने एक शब्द कहा, टिंकरिंग। इस टिंकरिंग को थोड़ा विस्तार से सभी को बताना चाहेंगे।
ये टिंकरिंग हम सब करते हैं, बचपन में हम भी करते थे, पंखा के कुछ तार निकाल दिए, जोड़ने का प्रयास किया, ये अलग मैटर है कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, वो हमारी क्यूरियोसिटी थी। टिंकरिंग मतलब यही होता है, तोड़ फोड़ करना, फिर उसको फिर एक समान प्रोडक्ट बनाना। तो ये जो हम सभी किए, लेकिन उसके एक व्यवस्थित रूप से जो बातें होती हैं ये अटल टिंकरिंग लैब या टिंकरिंग के माध्यम से संभव हो पाती है।
मेगा टिंकरिंग डे के अवसर पर बिलासपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आए हुए बच्चे और विभिन्न स्कूलों से आए हुए अटल टिंकरिंग लैब्स के इंचार्ज से भी हमारे फील्ड रिपोर्टर्स ने बातचीत की। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से की हुई ये बातचीत।
मेरा नाम मनोज कुमार यादव है, मैं कन्या कोटा बिलासपुर से हूँ। बच्चों को आज अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए सिखाया गया है, जो कि बच्चों में इनोवेटिव को एक नया आयाम देने के लिए है और इसे बच्चे धीरे धीरे क्या नए प्रोजेक्ट को भी सीखने के लिए उत्साहित होंगे। इसमें 4 बच्चे मेरे साथ आई हुई यहाँ पर और ये विभिन्न प्रकार के रोबोटिक्स से लेकर के, जैसे अभी वैक्यूम क्लीनर का है और अलग अलग प्रकार के जो भी नए उनके आइडियाज होते हैं उन पर वो काम करते रहते हैं लगातार। लैब में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी मेंटर है उनके द्वारा उनको गाइड किया जाता है और नए प्रोजेक्ट के लिए उनको और जानकारियां दी जाती है।
आदि दीक्षित, तो आदि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेटर था, लोग पहली बार ये सब सीखे हैं, लोग साथ ही हम लोग के साथ है, हमारे फ्यूचर के लिए हमने बीम के बारे में सीखा और आगे 3D प्रिंटर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और जो हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत बेटर है।
तो ये बीम और 3D प्रिंटिंग के बारे में, ये आपने पहले कभी सुना था या एकदम नया शब्द था आपके लिए?
प्रिंटर्स के बारे में पहले सुना था 3D प्रिंटर के बारे में, बट बीम मेरे लिए न्यू वर्ड था, उसके बारे में हमको नया जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिला उनसे।
टीचर कोऑर्डिनेटर ऑफ अटल टिंकरिंग लैब ड्रोना पब्लिक स्कूल।
नमस्कार, मैं रमा मिश्रा। अटल टिंकरिंग लैब की ये जो कोशिश है कि छोटे छोटे गांवों से और हर स्कूल से टैलेंट निकले, आज हम इस मेगा मैराथन में शामिल हुए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीति आयोग की जो इस प्रोजेक्ट को हर स्कूल में संचालन कर रहा है और आगे भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा पहला पार्टिसिपेशन है तो आगे और अच्छा करेंगे हमारे यहाँ के बच्चे।
मेगा टिंकरिंग इवेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चकरभाटा के टीचर मनोज कुमार यादव, जो इस तरीके के वर्कशॉप हमारे जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर बिलासपुर में जिस तरीके के मेगा टिंकरिंग इवेंट हो रहे हैं इनोवेशन से जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है?
ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन में हमारे एवरी क्षण में कुछ न कुछ नई नई समस्याएं आती रहती है और जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, नए टेक्नोलॉजी को उसमें नहीं लाएंगे तो हमको उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। टेक्नोलॉजी का काम ही है कि मनुष्य की हर काम को आसान से आसान बनाना, और हमारे जो बच्चे कल का ये भविष्य भी हैं तो इनको जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर दे सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इनको टेक्नोलॉजी से हम लेस कर पाएंगे, वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम चाहते हैं इससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा।
मेरा नाम सीमा यादव है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आगे चलकर अपने से ही कुछ इनोवेशन करना चाहूँगी और मैं खुद एक इनोवेटर बनना चाहूँगी।
बिलासपुर में नीति आयोग के रीजनल मेंटर ऑफ चेंज छत्तीसगढ़ के ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास के नेतृत्व में बिलासपुर में ये आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन के बारे में जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया,
तो हमारे ये टास्क दिया गया था कि बिलासपुर में हर स्कूल में टिंकरिंग होना चाहिए। जब हमने देखा तो बहुत कम स्कूल से जो बहुत एक्टिव थे, तो हमने इससे पहले कुछ स्कूल्स को विजिट किए और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इन सबको हम एक छत पे लेके आए सो दैट इट बिकम्स कंपलसरी फॉर देम टू इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो वहाँ से हमारी सोच स्टार्ट हुई, देन वी वेंट टू स्कूल्स, वी इनवाइटेड देम एंड वी ब्रॉट ऑल ऑफ देम टू इनक्यूबेशन सेंटर। तो नतीजा ये हुआ कि देर आर 21 स्कूल्स इन विच 19 स्कूल्स वर ATL स्कूल्स और दो स्कूल जो है नॉन ATL स्कूल्स थे। सो आज उसको हमने अंजाम दिया और इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज देर आर 120 प्लस स्टूडेंट्स हु हैज कम, 25 टीचर्स आए थे। और इसके अलावा हमने इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हमने सोचा कि जब बच्चे इतने दूर दूर से आ रहे हैं तो क्यों ना वैल्यू ऐड करें, तो वहीं जाकर हमने ये जो 3D प्रिंटिंग जो BIM टेक्नोलॉजी है उसको हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। तो इससे एक नई सोच बच्चों में आई, क्रिएटिविटी आई और बोले कि हम कोई भी हमारी जो पैशन है हम उस प्रोफेशन में किस तरह से चेंज कर सकते।
इस पूरे प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में कितना समय लगा और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए?
ऐसे इवेंट हम जब भी प्लान करते हैं तो लोगों की सोच बदलने में बहुत बड़ा चैलेंज आता है, मतलब इन सब लोगों को एक समय में एक छत के अंदर में लेके आके वो एक्टिविटी कराना इज अ बिग चैलेंज। सो हमने इसको थोड़ा सा प्री प्लान किया, तो वी वेंट टू स्कूल्स, टॉक टू द प्रिंसिपल्स, टॉक टू द इंचार्जेस और उनको हमने बाध्य कराया कि आप वो आएंगे करके कमिट करवाया। और न केवल दैट, नीति आयोग से भी कंटिन्यूस करस्पॉन्डेंस चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का भी कंटिन्यूस करस्पॉन्डेंस चल रहा था। इनफैक्ट यस्टरडे इवनिंग ऑल्सो हमने सब स्कूल्स को फोन किया और पर्सनली फोन किया और वी मेड श्योर दे आर कमिंग हियर एंड दैट्स हाउ सब यहाँ पे आए और ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ।
ये बिलासपुर का पहला इस तरीके का इवेंट है जहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज को एक छत के नीचे लाया गया, उन इनोवेटर्स को भी लाया गया जो शायद कल को साइंटिस्ट बनेंगे या किसी फील्ड में जाकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस फील्ड में आप बिलासपुर को कहाँ देखते हैं अभी?
मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये इंक्यूबेशन सेंटर बिलासपुर स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है, पिछले 3 साल तक ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रहा था एंड मई से बिलासपुर स्मार्ट सिटी हैज टेकन ओवर। और पिछले 3 साल में कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं हुए, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर का जो मेन उद्देश्य होता है तो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, उनको फाइनेंस करना, उनका कंपनी फॉर्म करना, वो नहीं हुआ। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट 3 years वी हैव एक्चुअली गॉन इनटू प्रॉफिट एंड नॉट ओनली दैट, इस तरह के जब हम करते हैं तो लोगों में इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया अलग से उत्साह होता है। और जैसे कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। सो दिस इज वन इवेंट विच वी हैव कंडक्टेड एंड वी आर प्लानिंग फॉर मोर सच इवेंट्स वेयर बच्चे आएंगे, अपने क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे। हमारे पास सीड फंडिंग के लिए भी लोग ऑलरेडी रेडी है, 1 crore का सीड फंडिंग वी ऑलरेडी मैनेज्ड। सो बस हमारे पास प्रोजेक्ट आने की देरी है, वी विल गिव द सीड फंडिंग, वी विल फॉर्म द कंपनी एंड वी विल मेक एंटरप्रेन्योर्स। सो दैट इज द प्लान, बाय डिसंबर वी वुड आप लोग कुछ एंटरप्रेन्योर्स को देख पाओगे जिनको हम फंडिंग करेंगे और वो अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे।
तो सिर्फ कुछ एंटरप्रेन्योर्स को नहीं देखेंगे, शायद एक नया बिलासपुर हम देखेंगे जहाँ पर यूथ कुछ अलग कर रही हो और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है उनके कामों के लिए।
बेसिकली अगर आप ATL को देखोगे तो ATL में प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ये है, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं बिकॉज इनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, स्टेम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हम उन्हीं के राह में चलते हुए वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग ATLs, वी आर ब्रिंगिंग एंटरप्रेनर्स फ्रॉम स्कूल्स। दो तरह के होते, कॉलेज के एंटरप्रेनर्स को भी लेके आ सकते, बट वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग स्कूल्स टू मेक एंटरप्रेनरशिप पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज आगे चलकर आप देखोगे जिस तरह से AI आ रहा है, सो मशीन्स विल रिप्लेस मैन इन द नेक्स्ट 4 years. There will be no jobs. अभी जैसे हमने सुना भी था, so हम आज के बच्चे युवा जो 65% of the population है, who are going to make India proud third largest economy in the world. So हम उनको support कर रहे हैं. We are making them independent. We are making them think in a different way and be entrepreneurs. So that is the whole. Yes, बिलासपुर को आप नया बिलासपुर देखोगे.
Group Captain Y श्रीनिवास ने Mega Tinkering Day के अलावा 3D printer का भी जिक्र किया. इंक्यूबेशन सेंटर बिलासपुर में 3D प्रिंटर का इंस्टॉलेशन किया जाना है. आए हुए बच्चों को 3D प्रिंटर के विषय में भी जानकारी और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया. इस विषय के एक्सपर्ट आर्किटेक्ट देवाशीष घटक से हमने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया,
सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बच्चों को नवाचार के लिए, क्रिएशन के लिए उन्होंने एक जगह दी है और ये बच्चे ही भविष्य हैं, क्योंकि आज से ही इनको एक क्रिएटिविटी का संदेश मिल रहा है और एक मौका मिल रहा है. तो यहाँ मुझे मौका मिलना बच्चों को बताने के लिए मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ. यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हुई है वो हमने ये प्रयास किया बताने का कि बच्चों को 3D प्रिंटिंग से पहले का क्या प्रोसेस है, जो डिजिटली हम उसको कैसे बनाएं और वो कितना आसान है आज के सॉफ्टवेयर के युग में, और आसान बच्चों के लिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसको उतनी आसानी से ग्रैस्पिंग पावर भी उनके पास वो सीख भी लेंगे. और सबसे मज़ेदार जो बच्चों को मुझे ऐसा लगा कि बात लगी कि वो ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स के हों, टीचिंग से संबंधित हों, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हों, मैथ्स बायोलॉजी स्पेस साइंस, सभी विभागों में बीम का जो सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम 3D प्रिंटिंग में आगे बढ़ते हैं उसकी जानकारी उनको मिली. वो पाकर बहुत खुश हुए, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि हम किसी भी फील्ड के हों हमको बीम सीखना ही चाहिए, तभी हम इस आधुनिक जीवन में जो टेक्नोलॉजी है उससे हम आपको अपने आप को अपडेट करके रख सकते हैं, उसके बाद ही हम 3D प्रिंटिंग में जाएंगे. तो उसके बाद ये फर्स्ट सेशन जो था हमारे पूरे प्रेजेंटेशन का, उसमें यह था कि हम कैसे उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करें, स्वयं करें, सिर्फ लाइब्रेरी से नहीं या रेडीमेड ऑनलाइन नेट से उतार कर किसी मॉडल को ले लिए और उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग में उतार दिया, ऐसा नहीं. हम जब टिंकरिंग का वास्तविक उसको धरातल पे लाने के लिए टिंकरिंग का उद्देश्य है वो उनको बच्चों को सिखाया गया कि भाई आप पहले अपना डिजाइन बनाइए, आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप बनाना चाहते हैं उसको आप अपनी थॉट को डिजाइन में कैसे बना सकते हैं बीम सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल के माध्यम से, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके सीधे कमांड दे दीजिए तो 3D प्रिंटर में आप उसको मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं.
जहां आपने इतने सारे नए चेहरे देखे, इनमें कई की आंखों में कुछ सपने थे कि हमको ये करना है, हम आगे चलकर ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ की आंखों में शायद अभी वो क्लैरिटी नहीं थी, तो उनके लिए शायद ये एक नया मौका होगा, उनको एक नया ऑप्शन दिखा कि हम ये भी ऑप्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी हम कुछ कदम उठा सकते हैं.
जी हाँ, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे मैथ साइंस ले लिए तो वो आखिरी टारगेट होता है, बाकी बच्चों को ऐसा लगता है शायद वही कुछ नवाचार कर सकते हैं, और ये भावना हमको बच्चों के मन से बिल्कुल निकाल देनी है. वो चाहे आर्ट्स पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया इतिहास के भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो सिंधु घाटी का हो या ताजमहल का हो या चोल वंश के राजाओं का हो, आप जिनके भी वो स्मारक देखते हैं, जिनके भी वो बने हुए भव्य महल देखते हैं या जो अवशेष भी देखते हैं, उनको अगर बच्चों को सामने 3D उसको उसका बीम के द्वारा उसका मॉडल बना लें, डिजिटल मॉडल बहुत आसान है, उसको बना के आप उसको प्रिंट के रूप में बच्चों को उसको छू कर देखें, तो ये बच्चों को एक बहुत अच्छा स्कोप दिखा और बहुत रुचि से बच्चों ने उस एंगल से सीखा कि ये सिर्फ मैथ साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ने वालों के लिए भी नहीं है, ये आर्ट्स कॉमर्स पढ़ने वालों के लिए भी इसमें बहुत से स्कोप है, बायो पढ़ने वालों के लिए बहुत स्कोप है, जैसे प्रोस्थेटिक अंग बन रहे हैं भी आजकल, टीथ बन रहे हैं, या आने वाले समय में तो ह्यूमन ऑर्गन भी बनने वाले हैं अगर उसके लिए उस प्रिंटिंग मटेरियल उस रूप में अवेलेबल होता है. तो इसलिए बच्चों को बहुत खुशी हुई कि सभी बच्चे इसमें, क्या है ये समग्र विकास का समय है, किसी एक दो चुनिंदा लोगों का नहीं, ये पूरा समन्वय करते हुए सभी समग्र सभी बच्चों को लेके चलना है हमको, समाज का कहीं का भी बच्चा हो सभी विषय के बच्चों को साथ में लेके चलना।
नवाचार को बढ़ावा देते हुए ये बहुत अच्छी पहल है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बिलासपुर के जो बच्चे हैं ये ऐसे ही निखरते रहें और किसी बेहतर स्थान पर और हमारे देश को एक बेहतर मोड़ दे सकें।
काफी अच्छी बात आपने कही और आपने एक बात कही थी कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और ये तो एक बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन उनको दिया, आगे आप किस तरह से इस चीज को सुचारू रूप से चलाना चाहेंगे, उनको क्लास कैसे देना चाहेंगे, इस विषय में हमें बताइए।
क्लासेस का अरेंजमेंट जो है, देखिए मैं प्रोफेशनल हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, इसमें डेफिनेटली आप लोगों का या समाज के और लोगों का या शिक्षक गणों का या टिंकरिंग जैसी संस्था है या इंक्यूबेशन सेंटर है इन संबंध में लगेगा। उसमें जो बच्चे जरूरतमंद हैं और जो बहुत होनहार हैं और इच्छुक हैं, होनहार से ज्यादा मैं कहूंगा इच्छुक हैं सीखने के, उन बच्चों को हम निशुल्क सिखाएंगे, वही मेरी तरफ से स्कॉलरशिप रहेगी। और वो रहेगा कि उन बच्चों को टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करें, जैसे कई बार वो सिस्टम में लैब जाना पड़ता है बच्चों को, उतने जीबी का ग्राफिक कार्ड नहीं मिल पाता, वो हम प्रोवाइड कर देंगे टेक्नोलॉजिकली, बच्चों को समय प्रोवाइड कर देंगे, जितना भी समय बच्चे मांगेंगे हम उनको समय दे देंगे। हाँ, जो बच्चे सक्षम हैं और जो कर सकते हैं दूसरे जगह क्लासेस और ज्वाइन, उनको हम गाइड कर देंगे कि आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक लिमिट होती है कि कितने बच्चों को हम बता सकते हैं, उसमें लिमिटेशन आप लोग तय करेंगे, बच्चों को आप सिलेक्ट करेंगे और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे इसको सीख सकें, आगे बढ़ सकें, ये मैं चाहूंगा। टेस्ट के माध्यम से होगा, उनके और मेरिट के माध्यम से भी, और टेस्ट ऐसा नहीं है कि बच्चा जो ज्यादा नंबर पाया उसकी रुचि भी, हम टेस्ट को ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि बच्चे की रुचि, उसकी विजन, उसके सब्जेक्ट और उसकी आर्थिक स्थिति, ये प्राथमिकता रहेगी।
इस आयोजन में आए हुए बिलासपुर के विभिन्न स्कूलों के टिंकरर्स और ATL इंचार्ज से हमारे फील्ड रिपोर्टर्स ने 3D प्रिंटर से जुड़े हुए इस डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी कुछ बातचीत की।
भूमिका, आप आधारशिला स्कूल से हैं, तो आज आपने इस मेगा टिंकरिंग इवेंट में क्या सीखा है और क्या कुछ नया जाना है इसके बारे में बताइए।
सर ने बताया कि BIM कैसे यूज हो, कि जैसे कौन से फील्ड में यूज होता है, मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, स्पेस इंजीनियरिंग, ऑल दिस, और कैसे पाइपलाइंस आर्किटेक्चर में कैसे यूज होता है, और CAP एंड MEP मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में कैसे यूज होता है। सर ने ये बताया कि ये चीज नेक्स्ट जनरेशन, जैसे टेक नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनके लिए कितना यूजफुल है।
मेरा नाम हिमानी गंधर्व है, मैं कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। यहाँ मैं आई हूँ तो बीम के बारे में और 3D प्रिंटर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। 3D प्रिंटर तो थोड़ा पता था, फिर भी यहाँ आकर कुछ डीपली पता चला।
मेरा नाम देवेंद्र यादव है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी शंकर नगर स्कूल से हूँ। बिलासपुर प्रोग्राम में हम लोग को सिखाया बीम के बारे में, वो बीम के बारे में मतलब हम लोग को पता नहीं था, हम 3D प्रिंटर के बारे में सुने तो थे पर 3D प्रिंटर कितना काम आता है उतना पता नहीं था हम लोग को, लेकिन आज सर ने जो बताया उस हिसाब से हम लोग को पता चला कि बीम वगैरह भी उसी हिसाब से सीख सकते हैं।
अभी हमारे साथ है चिन्मय, जो कि है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल दयाल बन से, तो आइए जानते हैं कि उन्हें आज का ये इवेंट कैसा लगा और उन्होंने क्या नया सीखा।
पहले से इस फील्ड में हूँ, अभी मेरे को इस फील्ड में 4 साल हो गया जहाँ में मैं रोबोटिक्स और टेक के बारे में सीख रहा हूँ, बट आज जब हमने एक आर्किटेक्चर के नजर से देखा कि कैसे किसी चीज को प्रिंट करने के दौरान अलग अलग एंगल्स को डायमीटर को ध्यान में रखना पड़ता है, तो शायद अब मैं अपने जो पिछले जो भी चीज मैं प्रिंट कर चुका हूँ उनमें खामियां निकाल सकता हूँ और अब जो चीज बनाऊंगा उनको और परफेक्शन से बना सकता हूँ।
तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप पिछले 4 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसा आया?
इंटरेस्ट तो हमेशा बचपन से ही रहता है, क्योंकि चीज़ों को खोलना और जोड़ना ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जब उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो इंसान और ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित हो जाता है, तो एक प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला तो मैं फिर बस भिड़ गया और अभी लगातार 4 साल से इसी फील्ड में।
तो मतलब आज जो आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में जाना, बिम के बारे में जाना, मतलब कहीं ना कहीं आप पहले भी इसके बारे में सुन चुके थे, जानते थे।
एक परफेक्ट वर्ड नहीं मिला था मुझे बिम, बट उसमें होता क्या है वो सारी चीज़ों को मैं जानता था। अब जब एक वर्ड मिल चुका है तो हो सकता है मैं इसके ऊपर और रिसर्च करके अपने स्किल्स को डेवलप कर पाऊंगा।
बातचीत के दौरान कुछ स्कूलों के अटल टिंकरिंग लैब्स में कुछ और प्रयोगों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई।
आप लोगों ने मोक्षा बनाया, तो ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
मोक्षा एक प्रकार का फिल्टर है जो कि डेड बॉडी एश, जो कि जल को दूषित करता था, उसको साफ करने का काम करता है। डेड बॉडी एश को जब हम पानी में डालते हैं तो आसपास का पानी और जल जीवन सब नष्ट हो जाता है, हम उसको उपयोग नहीं कर सकते, उससे चल के आने वाले लोगों को चर्म रोग जैसे कई सारे रोग हो जाते हैं, जो मछली का व्यापार करते हैं जिनका जीवन उस पर आश्रित है उनके व्यापार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार आग को अगर पानी में नहीं डाला गया तो इसका मतलब अंतिम संस्कार पूर्णतः नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने एक ऐसा बॉक्स बनाया है जिसके अंदर आप जब राख डाल करके पानी में विसर्जित करते हो तो एक तो हिंदू रिचुअल्स पूरे भी हो जाते हैं और नदी को कोई प्रदूषण नहीं फैलता। जब हम उसके राख को बाहर निकालेंगे तो उस राख में 25% फास्फोरस होता है जो कि पेड़ पौधे को उगाने के काम आता है। इसीलिए हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है।
अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया मोक्ष के बारे में, तो इसका आइडिया आपको कहां से आया?
मैं रहता हूं कतियावाड़ा दुर्गा चौक में, जस्ट पीछे हमारे बहती है अरपा नदी और वहाँ पे पूरा केवटों का मोहल्ला है। लेकिन थोड़ी ही दूर जहाँ से नदी बह करके आती है उस रास्ते में एक मुक्ति धाम है जो शमशान घाट है। वहाँ पे सभी लोग बॉडी जलाने के बाद सारे राख वहाँ पे फेंक देते थे, तो जो लोग अरपा नदी जब पानी से भर जाता था तो पुल भी डूब जाता था, तो जब वो चल करके उससे आते थे तो उनके पैरों में इन्फेक्शन होते थे जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उनके, और जो लोग थे जो केवट थे या जो भी मछुआरे थे वो सब के सब उसी नदी पे डिपेंडेंट थे। तो जब उनको व्यापार नहीं मिलता था तो उनको तरह तरह के काम करने पड़ते थे और अदर स्किल नहीं होने के कारण उनको भुखमरी का सामना करना पड़ता था। और पोल्यूटेड वाटर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में था, इन सभी चीज़ों को कम्बाइन करके हम लोगों ने मोक्षा बनाने का सोचा।
We are students of Academy Tide Public School. We just made advanced vacuum cleaner. We control this device with mobiles.
Okay, so you said this is advanced vacuum cleaner. इसमें ऐसा खास क्या है जिसे इसे advanced नाम मिला?
इसका एडवांस नाम इसलिए पड़ा, जैसे कि नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स है उसको हमें हैंड से कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे डेस्क हो गया उसके नीचे हम जा नहीं सकते जैसे डस्ट होता है, तो ये इसका मोबाइल से कंट्रोल करके नीचे से जाके पूरा डस्ट क्लीन कर सकता है, जहां हम नहीं जा सकते वहां ये जा सकता है।
अच्छा, तो आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे आए, फिर आपको मदद कैसे मिली?
दरअसल ये आइडिया हमारे होम से आया है, हम अपने मम्मी को ही देखे हैं जैसे वो साफ सफाई करते हैं, जैसे जहाँ वो झुक नहीं सकते अंदर सफाई नहीं कर सकते, तो हम वहाँ देखे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले कि एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जहाँ हम नहीं जाएं वहाँ डिवाइस जाके क्लीन कर सके।
यह आयोजन मुख्य रूप से रचनात्मक विचारकों, नव प्रवर्तकों और उद्यमियों को विकसित करने पर केंद्रित था जो भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि भविष्य का निर्माण यहीं अभी अगली पीढ़ी द्वारा किया जा रहा है। बिलासपुर में इस आयोजन में आए लगभग 150 बच्चे बेहद जोश में थे, उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। आज एक काम करने वाला वैक्यूम क्लीनर का मॉडल उनको स्वच्छता की ओर भी प्रेरित कर रहा था और भविष्य में नई योजनाओं और कीर्तिमान गढ़ने के सपनों को साकार करने का रास्ता भी दिखा रहा था और कह रहा था, थैंक यू नीति आयोग, थैंक यू अटल टिंकरिंग लैब्स, थैंक यू इंक्यूबेशन सेंटर बिलासपुर। एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी युवा नवाचारी कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने मेगा टिंकरिंग डे के रूप में किया। ये आयोजन बिलासपुर में इंक्यूबेशन सेंटर में विभिन्न स्कूलों से आए हुए सारे छात्रों को एकत्रित करके एक ही छत के नीचे किया गया। इस अवसर की रेडियो रिपोर्ट अरपा रेडियो द्वारा प्रसारित की गई। फील्ड रिपोर्टर्स थे अलंकृता मिश्रा और सोनम सोनी, प्रस्तुति सहयोग मातृका साहू और प्रस्तुतकर्ता थी संज्ञा टंडन।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पण।